ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सत्रवां स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। मत प्राण रक्षण अनंत स्वभृत्य ऋषि वाक्यं विधिस्व चमक आगे चलेगा। यत अवोचत असत विविश्व त्वं ईश्वर मत अपर अवतु कम। यही है ना? हाँ यही है, यही है। अच्छा अच्छा, अश्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। मत प्राण रक्षण अनंत पितृबद्धस्य मत प्राण रक्षण अनंत पितृबद्धस्य मन्ये स्वभृत्या ऋषिवाक्यमृतं विशन्। मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विदास्तु खड्गं प्रगुह्य यदवोचदशवी विदस्तु त्वामीश्वरो मदपरो वस्तुकं हरामि। मत प्राण रक्षण अनंत पितृबद्धस्य मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगुह्य यदवोचदशवीद् विदस्सु त्वामीश्वरो मदपरो अवन्तुकं हरामि। माता जी लोग मत प्राण रक्षणम, मेरे जीवन की रक्षा करके अनंत, हे अनंत असीम दिव्य गुणों के अगार पितुः, मेरे पिता का बधश्च तथा बध मन्ने मानता हूँ, स्वभृत्य आपके अनन्य दासों का ऋषि वाक्यम तथा नारद मुनि के शब्दों को ऋषम सत्य विधातुम सिद्ध करने के लिए खड़गम तलवार प्रगुहिया हाथ में धारण करके यता चुकी अवोचता, मेरे पिता ने कहा असत असत विशत्सु, बड़े ही अपवित्र ढंग से कर्म करने की इच्छा से त्वाम तुमको ईश्वर कोई परम नियामक मत अपरा, मेरी अपेक्षा द्वारा कोई अवंतु बचा ले कम तुम्हारा सिर हरामीम, अब मैं छीन कर दूंगा। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई और परम निरंतर नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में अपने अपने भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29 में भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देवेशस्ति न प्रिया, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निस्संदेह समदर्शी हैं, न तो कोई उनके मित्र है और न कोई उनका शत्रु, किंतु मनुष्य भगवान से लाभ की कामना करते हैं, अतएव भगवान उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी ही इच्छाओं के अनुसार होते हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी होने के कारण हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हिरण्यकश्यपु का वध तथा प्रहलाद महाराज की रक्षा करना भी परम नियंता के कार्यकलापों के इसी नियम के अनुसार है। जब प्रहलाद जी की माता हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु नारद मुनि के संरक्षण में थी, तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा के लिए प्रार्थना भी की थी। और तब नारद मुनि ने आश्वासन दिया था कि प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का वध करने जा रहा था, तो भगवान ने भगवद गीता में दिए गए अपने वचनों की पूर्ति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, तथा नारद के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रहलाद महाराज को बचा लिया। भगवान का एक करनी से कई उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह हिरण्यकश्यपु का वध तथा प्रहलाद की रक्षा का कार्य भगवान के भक्त की मान्यता तथा भगवान की स्वामी भक्त को सिद्ध करने के लिए एक साथ किए गए भगवान के अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, नतस्य कार्य कारणम च विद्यते। भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा किया जाता है। परस्य शक्ति विविधैव सूर्यते। भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा सब कुछ संपन्न होता है। अतएव जब वे स्वयं कुछ करते हैं, तो वे केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होता है। भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने निष्ठावान सेवक पर अत्यधिक कृपा करते हैं। बहुत सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी, कंप्लीट लेक्चर है ये सब कथा। हे भगवान, दिव्य गुणों के असीम अगार अपने मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर के कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में अपने अपने भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब शरीर से नहीं, मन से। शरीर तो देखो आने जाने वाला है, ये तो यौवन है, बाल अवस्था है, बुढ़ापा है, सर्दी है, गर्मी है। ये मन को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ से मतलब स्वरूप में रहना है। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान के हम सेवक हैं, नित्य सेवक हैं। एक दो घंटा के लिए नहीं, या मंदिर में आते हैं तभी नहीं, घर में अपने अपने होते हैं तभी भी हम अपने स्वरूप में स्थित रहे। यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने भृत्य, भृत्य का मतलब होता है दास, अपने दास को रक्षा करने के लिए आपने मेरी रक्षा किया, मेरे पिता का वध किया, क्योंकि आप अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने वाले हैं। सत्यम विधातु निजभृत भाषिता। भगवान के प्रिय भक्त जो उनके प्रिय जन हैं, जो उनके अनन्य सेवक हैं भगवान के, उनके बातों को भगवान सत्य करते हैं। प्रहलाद जी के जीवन में कौन सी भक्ति थी? क्या करते थे प्रहलाद जी? असुर कुल में थे, कोई मंदिर तो बना नहीं सकते थे, वहाँ भगवान की स्थापना भी नहीं कर सकते थे। वे बहुत अनेक प्रकार के लोग विरोधी थे वहाँ भक्ति मार्ग में। पिता ही बहुत विरोध करते थे। कौन सी भक्ति किया? तीसरा भक्ति किया था, नौदा भक्ति में तीसरा भक्ति किया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बैठ बैठ करके केवल भगवान विष्णु का चिंतन किया, स्मरण किया, केवल प्रभु को याद किया उन्होंने। ये भक्ति थी। माला भी नहीं जप सकते थे ऐसे जैसे हम लोगों को सुविधा मिला है। तिलक नहीं लगा सकते थे, वो कोई सुविधा नहीं था वहां। लेकिन बैठ करके भगवान का केवल चिंतन किया, स्मरणम, श्रवण किया था परीक्षित महाराज ने। भगवान के दिव्य कथाओं को ठीक से अपने कर्णपुट में डाल करके हृदय में बैठा लिया था। इसीलिए मृत्यु आने के बाद भी, मृत्यु के समाचार सुनने के बाद भी परीक्षित महाराज भयभीत नहीं हुए, घबराए नहीं। यदि शरीर में कोई रोग आ जाता है, किसी प्रकार का बीमारी है शरीर में, या डॉक्टर कह दे कि भाई अब बहुत दिन के आप यहाँ मेहमान नहीं हैं, तो व्यक्ति पहले ही घबरा जाता है। इसका कारण ये है कि उसके जीवन में उसकी भक्ति बहुत कम है, कच्चा है। घबरा जाता है व्यक्ति। लेकिन प्रहलाद जी को बार 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 ये बताया गया कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, तुम ये सब नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रहलाद जी ने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा। महाराज परीक्षित भी मृत्यु से घबराए नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन किया, क्या किया? कथा किया केवल, श्रवणम कीर्तनम, इसके बाद विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का जो स्मरण था, जो चिंतन था, वो 24 घंटा बना रहता था। भय से नहीं, स्वाभाविक था। गीता में भगवान कहते हैं ना कि चार प्रकार के जीव मेरा भजन करने आते हैं लोग, और तो दुखी लोग, अर्थार्थी, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी। ये चार प्रकार के जीव आते हैं मेरे पास में, लेकिन अर्जुन ने इन्हें सुकृतिवान ही समझो, चाहे किसी भी भाव से मेरे पास आए, इनका सुकृति है जीवन में। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने किसी भय से भजन नहीं किया, उनके अंदर स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम था। ऐसा होना चाहिए, स्वाभाविक प्रेम हो भगवान से, प्यार हो भगवान से, स्वाभाविक मन चला जाता था भगवान के पाद पद्मों में, निरंतर हमेशा भगवान के चरणों में रहता था ये। अरे क्षमा करना प्रभु, आप लोग ले बच्चा कैसे बंद होगा, इसको तब बंद करना, आज था इसको बंद कर अपने पास रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो प्रहलाद महाराज की जिस अवस्था में भी रहते थे, वो प्रहलाद महाराज क्या करते थे कि भगवान का चिंतन बना रहता है था दिल दिमाग में। आप हम सबको भी बहुत सहज है, शरीर तो वृद्ध हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, जीर्ण भी हो सकता है, लेकिन शरीर में जो रहता है उसकी बुढ़ापा नहीं आती है। शरीर का जो मालिक है, शरीर में जो रह रहा है भगवान, उसकी बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आती है, वो जवान रहता है। आप देखते हैं ना हमारे आश्रमों में यानी इस्कॉन में, वृद्ध व्यक्ति भी नाचने का कोशिश करता है, देह को हिलाता है खूब, क्योंकि अंदर से जवान है, वो जवान है, भगवान की बुढ़ापा नहीं आती है कभी। तो शरीर का जो मालिक है, ईश्वर है, वो तो जवान है बिल्कुल। तो आपकी शरीर की अवस्था कुछ भी हो, मन को स्वस्थ रखना है, और मन की भी बुढ़ापा नहीं आती है। मन कहाँ बूढ़ा होता है, शरीर जितना मर्जी मरणासन पर पड़ जाए, मरने वाला हो, फिर भी मन जवान रहता है। एक व्यक्ति था, शायद कभी सुने होंगे आप लोग किसी संत से, एक व्यक्ति था, वो मरने की तैयारी में था, मरने वाला ही था, तो सोचा कि मरने जा रहा हूँ तो किसी किसी से मिल लेता हूँ, अपने बच्चों से अंतिम दर्शन करूँ उनका मैं। तो जब वो कहा कि भाई अब तो मेरी बहुत अंतिम क्षण है ये, अब ये बताओ कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, तो बोले कि पिताजी मैं यहीं पर हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ मैं। तो छोटा वाला कहाँ है, बीच वाला, बोले कि पिताजी मैं भी यहीं खड़ा हूं। भाई छोटा वाला कहाँ है, सबसे नाम रखते हैं रिंकू पिंकू टिंकू, सब नाम रख देते हैं उल्टे सीधे सब। वो छोटा वाला कहाँ है, बोले कि पिताजी मैं भी आपके चरणों में ही खड़ा हूं। उस बूढ़ा व्यक्ति ने जो मरने जा रहा था, उसने कहा कि जब तुम तीनों यहीं पर हो तो दुकान में कौन है। इसका मतलब कि मन की बुढ़ापा नहीं है, मन जवान है उसका। वो जा रहा है, उसकी चिंता लगी है कि पैसा ना खिसक जाए हाथ से। प्रहलाद महाराज के जीवन में ऐसा नहीं था कुछ भी। धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, संतों के संग के माध्यम से, भागवत जी के चिंतन के माध्यम से, जप के माध्यम से, धीरे धीरे संसार में जितनी रस्सी से हम बन रहे हैं, उस रस्सियों को काटना है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय से जो गांठ लगी हुई है, पुत मित्र इत्यादि के प्रति, भाई के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, घर मकान के प्रति, देश के प्रति, नाम के प्रति, जो भी हमारे अंदर जो गांठ बनी है, रस्सी जो लगी है, इसको विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इसको धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से काटा जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। प्रहलाद जी ने संसार के सारे रस्सियों को काट दिया था। प्रभुपाद जी बताते हैं ना, इसमें अनुवाद में कहते हैं कि जब माता कयाधु ने प्रार्थना किया कि इसकी रक्षा होती रहे, क्योंकि कयाधु का हरण करके इंद्र ले जा रहे थे, भगवान नारद जी ने उनकी रक्षा किया, तो उन्होंने प्रार्थना किया था। तो प्रार्थना के बाद में नारद जी ने यही बात कही कि इस बालक को हर क्षण सुरक्षा रहेगी, असुरों से या इनके दुश्मनों से कोई इनको हानि नहीं पहुंचा सकता। उस बात को सत्य करने के लिए भगवान सत्यम विधातु निज, निज माने अपना, वृत्त माने दास, अपने सेवक के बात को सत्य करने के लिए भगवान दोनों को यहां रक्षा कर लिए हैं। प्रहलाद जी को रक्षा करके, बचा करके उनकी रक्षा किया, और हिरण्यकश्यपु भी भगवान का परम भक्त था, उसको मार करके उसको मुक्ति दे दिया प्रभु ने। भगवान का मारना और भगवान का प्यार करना दोनों एक जैसा ही है। इसीलिए नारद जी के जीवन में जो चिंतन था, स्मरण जो था, विष्णु स्मरणम, और किसी का स्मरण नहीं, सुखदेव जी लिखते हैं, कहते हैं केवल विष्णु का स्मरण करते थे वो। भगवान विष्णु का याद करना, चिंतन करना आप बड़ा सहज है, मन को लगाना है। शरीर आपका कहीं भी रहे, मन आपके प्रभु के पाद पद्मों में लगा रहे। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा देना भाषी, तुलसी जी का जब हम प्रार्थना करते हैं तो तुलसी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि राधा गोविंद जो हैं, जो श्याम सुंदर जी हैं, राधा माधव जी जो हैं, उनके पाद पद्मों में हमारा मन लगा रहे, ऐसा कुछ इंतजाम करना है तुलसी महारानी। दीन कृष्ण दासे कया ए जैन मोरे हाय, ए जैन मोरे हाय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा देना वासी। मन लगा रहे प्रभु के पाद पद्मों में, चिंतन बना रहे उनके साथ, हम जुड़े रहे उनके साथ में। प्रहलाद जी चाहे हाथी के पैर से कुचलवा दो, या पहाड़ों के नीचे फेंक दो, या अग्नि में जला दो, शरीर से बिल्कुल अलग हो गए थे, मन प्रभु में लग गया था। यदि मन प्रभु में लग जाए ना, तो शरीर की अवस्था से भूल जाता है व्यक्ति, शरीर के रोग भी उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, यदि भगवान के पाद पद्मों में उसका मन लगा है तो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भीष्म पितामह के विषय में कि कोई भी ऐसा शरीर का अंग नहीं था जहां अर्जुन का बाण नहीं चुभा था शरीर में, बाण के सज्जा पर ही लेटे थे वो, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां अर्जुन के बाण नहीं लगा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाहर से लगता था देखने में कि बड़ा इनको पीड़ा होता होगा, बड़े अस्वस्थ हैं, बड़े दर्द होता होगा, लेकिन नहीं, उनको कोई दर्द नहीं था, कोई पीड़ा नहीं था, वो स्वस्थ थे क्योंकि भगवान के साथ बैठे थे, कोई पीड़ा नहीं था। यदि हम भी भगवान के साथ ठीक से जोड़ ले अपने को, ठीक से जोड़ें। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपासते। अनन्य भाव से यदि उनका चिंतन करें, स्मरण करें, उनको याद करते रहें। अनन्य का मतलब ना अन्य, और कोई भी नहीं, और कोई उनके अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं हो, उसको अनन्य कहते हैं। यहाँ तो अन्य सभी लोग हैं, बाकी वो नहीं हैं। हम जब भी करते हैं ना, तो हिसाब कुछ मन और कुछ लगाता रहता है, जोड़ घटाव करते रहते हैं हम लोग, उसको अनन्य नहीं कहते। संसार में आपने क्या बना लिया, कितना बना लिया, कितना आपने इकट्ठा कर लिया, उसका कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं है मृत्यु के सामने, क्योंकि मृत्यु सर्वहरश चाहम। मृत्यु जब आती है तो सब कुछ छीन लेती है, जबरदस्ती सब कुछ अपहरण कर लेती है, चुरा लेती है। उसके सामने से कोई मूल्य नहीं है। मूल्य क्या होगा, यदि आपने ठीक से संतों के साथ बैठ करके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम, सत प्रतिशत सत्य यही है, 110% सत्य यही है, इसका कोई पूछताछ नहीं है। हम सब जितने वैष्णव हैं, हम सबको बहुत सावधान होना चाहिए इन प्रसंगों को सुन करके। ये प्रहलाद जी की स्तुति है, प्रार्थना है, ये अपने माध्यम से हम सबको शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान का स्मरण करते रहो अनन्य भाव से, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरी अनन्य भाव से चिंतन करते रहो, कोई बीच में ना आ जाए, केवल मैं मतलब भगवान और जीव के बीच में कोई ना, कोई वस्तु नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई भोग नहीं, बीच में कोई नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्य का मतलब एक ब्रजवासी बता रहे थे एक बार, कि अनन्य का मतलब कह रहे थे कि एक ब्रजवासी बेचारा सीधा साधा होता है, रास्ते में बैठा था, कोई संत जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, आगे आगे एक शिष्य था, शिष्य ने कहा भाई तुम रास्ता छोड़ो, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। बोले क्यों? बोले कि हमारे गुरु जी अनन्य भक्त हैं भगवान के, रास्ता मार्ग दे दो। उसने कह दिया ब्रजवासी ने कि भाई तुम्हारे गुरु जी अनन्य है तो मैं अनन्य हूं। अब अनन्य का मतलब तो गीता में लिखा हुआ है, अब अनन्य माने क्या होता है। अब वो शिष्य चकरा गया, शिष्य ने पूछा कि भाई महाराज अनन्य माने क्या होता है, तो बोले कि तुम बताओ कि अनन्य माने क्या होता है। तो बोला कि अनन्य के मतलब कि भगवान के अलावा कोई देवी देवता, शिव ब्रह्मा और कोई देवी देवता दिमाग में ना आए, जीवन में ना हो, उसको अनन्य कहते हैं। अब तुम बताओ कि अनन्य माने क्या कहते हैं। बोले कि अनन्य का मतलब ये होता है कि कन्हैया के अलावा, कृष्ण के अतिरिक्त किसी देवता देवी के नाम भी ना जानता, उसको अनन्य कहते हैं। बताओ ये अनन्य, और तो नाम भी जो तुम जानते हो ना कि इतने देवी देवता हैं, हमें तो किसी को नाम भी याद नहीं है, केवल कन्हैया का नाम याद है मुझे। तो अनन्य भाव से जो चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, और जो मेरी पूजा करता, अर्चना करता है, ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, तेसाम नित्य मने 24 आवर्स, ऐसे नहीं कि अब ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, अभी जब बाद में कर लेंगे या पढ़, नहीं नहीं, हाँ नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण जो मेरी पूजा पूजा में लगा, पूजा का मतलब केवल थाल सजा के ही नहीं, षोडश उपचारों से, वो भी एक बहुत बढ़िया पूजा है। ये पूजा का मतलब जप करना भी पूजा है, भागवत पढ़ना भी पूजा है, भगवान को भोग तैयार करना ठीक से ईमानदारी पूर्वक वो भी एक पूजा है, मंदिर में आना एक पूजा है। तो जो मेरी पूजा करता है 24 घंटा, ऐसे भक्त को जानते हो अर्जुन मैं क्या करता हूं, योग क्षेमा बहाम्य। जो वस्तु उसके पास नहीं है, जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु को मैं दे देता हूं, और देने के बाद जानते हो लाठी लेकर के मैं खा रहता हूं, उसका कोई बिगाड़ न दे, खराब न कर दे। योग क्षेमा, क्षेम मैंने रक्षा करता हूं उसका, ध्यान रखता हूं उसका। तो ऐसा फ्री में नौकर कहां मिलेगा आपको बताओ, उसके पहले तो आपको ये सब काम करना है, बाकी वो सब काम करेंगे। और ये 100% सत्य है, इसमें भगवान ने कोई बनावटी बात नहीं कही है। गीता तो उनके मुखारविंद से निकला हुआ है, गीता तो उन्होंने बोला है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान वीर्यवान है, शक्तिवान है, उनके जैसे शक्ति कोई रखता नहीं है। श्लोक में बता कहते हैं ना कि अपने भृत्य के दास, अपने दास के बात को सत्य करने के लिए, आपने मेरी रक्षा करने के लिए आप मेरे पिताजी को सर को शरीर से अलग कर दिया। आज देखिए, आज भी यदि भक्त लोग यदि ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो आप देखो उनका मन कितना खुश रहता है, कितना प्रसन्न रहते हैं वो सब भक्त लोग। आप संसार में वृद्ध व्यक्ति को देखो और हमारे इस्कॉन के जो बूढ़े लोग हैं उनको देखो, बड़ा भारी अंतर है। उनको देखने से ही लगता है कि इस्कॉन का कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, बाबा जा रहा है, वो कोई चिंता नहीं, रास्ते में जा रहा है। और बाहर के जो लोग वृद्ध हो गए हैं, शरीर पर जिनका वृद्धावस्था आक्रमण कर लिया है, उस व्यक्ति को देखो चिंता से उसका चेहरा खराब हो गया है, पीछे से नाती पोता भी उसके चादर चाबी खींच रहे हैं, लाके दो इधर। यदि हम अपने मात्रा को, अपनी अवस्था को ठीक से जोड़ लें भगवान के साथ में, तो आप समझें कि आपको चिंता हरण भगवान है, चिंता तो रहने नहीं देंगे। जिस जिस वस्तु के अभाव होगी वो भी सब कुछ दे देंगे, और दे करके उसका ध्यान रखेंगे आपका। आप मंदिर में आते हो ना, वो घर से ही ध्यान रखना चालू कर लेते हैं आपका, इसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। ऐसे कर्मा अनुसार कोई कर्म में विशेष बात लिखी हो तो भगवान उसका प्रभाव भी कम कर लेते हैं। भगवान सुहृद हैं, भगवान मित्र हैं, अपने भृत्य जनों का, अपने दास जनों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु कभी अपने कृपा को हटाते नहीं हैं। एक भजन में गाते हैं, गौरंग तुमी मोरा दया ना छाड़ी है, वो कभी दया को त्याग नहीं करते हैं भगवान, अपनी दया को, अपनी कृपा को, अपनी करुणा को कभी त्याग नहीं करते हैं, करुणावान है प्रभु। बस शर्त यह है कि प्रहलाद जी के जैसा हमारा चिंतन बने, यही प्रार्थना करते रहे प्रभु से, चिंतन बने, भगवान के साथ जुड़े हम सब, उसके योग क्षेम का वाहन करते हैं। कई कैसे भागवत जी में प्रसंग है जो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी के देखे जीवन में कितनी रक्षा किया, बड़े बड़े पहाड़ों से लेकर के बड़े बड़े जलाद पहलवान, कितने बड़े पहलवान थे कि प्रहलाद को हाथ से मसल सकते थे, लेकिन वो जलादों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। केवल चिंतन था, केवल स्मरण था, भगवान को याद करते थे। बाहर से फेंका, नीचे प्रभु ने उसको रोक लिया, अपने गोद में ले लिया। हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश किया, प्रहलाद जी बच गए वहां से। विष पान करने को दिया, उस विष ने अमृत का काम कर दिया। मीरा जी के भी प्रसंग में यही है, उनके पति ने, राणा ने जब विष दिया तो पीवत मीरा हाँसीरे, मीरा जी ने पी करके और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वो अमृत का काम किया। अग्नि किसकी रक्षा करती है? अग्नि तो सबको जला देती है। अग्नि सबको जलाने में समर्थ है, लेकिन प्रहलाद जी उसी अग्नि में बहुत बढ़िया से आराम से बैठे थे। वही अग्नि प्रहलाद जी को शीतलता दे रही थी और वही अग्नि प्रहलाद के जो बुआ थी उसको जला दिया होलिका को। केवल चिंतन का प्रभाव है, कोई मंत्र नहीं था, कोई जादूगर नहीं थे प्रहलाद जी, कोई चमत्कार भी नहीं था, केवल भगवान को बैठ करके चिंतन किया, याद किया। आप हम सब भी घर में सब्जी काटते समय, झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, भगवान को भोग बनाते समय, हर क्षण हर समय भगवान का कोई ना कोई लीला को लेकर के चिंतन करते रहो। गोपियां तो पानी भरते भरते भी, पानी भरना हो या झाड़ू लगाना हो, घर को साफ करना हो, सास ससुर की सेवा करना हो, कन्हैया बैठा रहता था मन में। यदि भगवान बैठे हैं, यदि प्रभु बैठे हैं, दो अवस्था है, दो चीजों में आनंद है, एक विश्वानंद और एक ब्रह्मानंद। विश्वानंद जो है संसार में है, कभी कभी बच्चों को खिला करके, उनके साथ बैठ करके, बातचीत करके, घूम करके भी थोड़ा आनंद आता है, क्षणिक आनंद आता है। लेकिन जिनकी अवस्था ब्रह्मानंद में है, प्रभु में है, मतिर क्षतिर यक्षति वासुदेवे, जिनका मति भगवान के पाद पद्मों में जुड़ गया है, लग गया है, वो निरंतर आनंदमय रहता है। कभी उसके मन में खिंता नहीं आती है। संत लोग सुबह उठते हैं, मन प्रसन्न रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही मेडिसिन है और सब रोग का दवा एक ही है। वो क्या है इस कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम। योग क्षेम का वाहन करते हैं। इतने आपत्ति विपत्ति आने के बाद भी प्रहलाद जी बिल्कुल डरे नहीं, खुश रहे। प्रभु है ना, उन पर भरोसा रखें, हम विश्वास रखें, अपने मन को टिका करके रखें प्रभु पर। यही भक्ति है। प्रहलाद जी के पिताजी को जब हिरण्यकश्यपु को प्रभु ने मार दिया तो भगवान ने पूछा कि प्रहलाद अब बताओ तुमको मैं क्या दूं? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आपने मेरे पिता को मार दिया है ना, आप डर गए हैं लगता है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में इच्छा है कि तुमको कुछ मैं दूं। क्या चाहिए तुम्हें? एक दो नहीं, सभी देवता लोग वहां आकर के उपस्थित थे, सभी देवताओं ने स्तुति भी किया है एक एक श्लोक में। किसी की जाने की ताकत नहीं पड़ती है कि उनके पास पहुंच जाऊं। देवताओं की बात छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी भी डर गई हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप जाइए उनके साथ रहती हैं। बोले मैंने ऐसा रूप में कभी रहा नहीं, मैं नहीं जा सकती। भगवान के अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं प्रभु की। लक्ष्मी जी भी जाने में असमर्थ हैं, डर रही हैं। ब्रह्मा जी के कहने के बावजूद बार बार ब्रह्मा जी निवेदन के रूप में कहते हैं आप जाइए, आपको देख करके हो सकता है क्रोध शांत हो जाए। जैसे पति देवता लोग जितना मर्जी बाहर में क्रोधित हो, घर में पहुंचते उनका दिमाग ठंडा हो जाता है बिल्कुल। आपको देख करके हो सकता है हो जाए। बोले कि नहीं नहीं, ऐसा भयानक दर्शन मैंने कभी किया नहीं जीवन में, मैं नहीं जा सकती। लेकिन प्रहलाद के जीवन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। भयापहा जस्या वै सूर्यमाला नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुद पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। यदि भक्ति महारानी हृदय में आ गई हैं, बैठ गई हैं, तो तीन चीज को दूर कर देती हैं भक्ति जी। क्या करती हैं? शोक, जो मन में शोक संतप्त रहता है हमेशा, कोई वस्तु प्राप्त हो गया तभी शोक है, नहीं प्राप्त हुआ तभी भी शोक है, इस शोक को दूर कर देती हैं भक्ति महारानी। शोक, मोह, मोह का मतलब होता है अज्ञान, आसक्ति, गलत चीजों में मन लगा लेना, संसार में मन को बैठा लेना, इस मोह को भी भक्ति महारानी काट देती हैं। शोक मोह भया, भय बहुत है, लोगों से भय है, घर में भय है, बुढ़ापा से भय है, जन्म से भय है, मृत्यु से भय है, इस भय को भी दूर कर देती है भक्ति महारानी। कब? जस्या वै सूर्यमाला नाम, जब भगवान के विषय में ठीक से हम सुनते हैं, ठीक से धारण करते हैं, तब तीनों चीजों से जीव मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी के जीवन में कोई भय नहीं था। आप सब पीछे सुने भी होंगे, आगे सुनेंगे भी, कोई भय नहीं है। प्रहलाद जी से प्रभु पूछते हैं, प्रहलाद तुमको क्या चाहिए बताओ, कौन सी संपदा, क्या दे दूं मैं तुम्हें? सभी देवता लोग उपस्थित हैं। धीरे से प्रभु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी नहीं मांग रहे थे तो धीरे से कहा, तुमको ब्रह्मा बना दूं? ब्रह्मा जी डर गए, वहीं बैठे थे चार, ब्रह्मा जी डर गए, ब्रह्मा बना दूं तुमको? तो प्रहलाद जी शांत हैं, ये सब कुछ चाहिए नहीं था। ब्रह्मा जी डर करके एक दूसरे पर देखने लगे, इनका क्या भरोसा, कब किसको ब्रह्मा बना ले, कब हटा ले हमें, वो तो भगवान है ना, वो तो मशक कर ही बिरंच समा, वो तो ब्रह्मा जी को हटा करके मस्कीटो से यानी मच्छर से भी सृष्टि करा सकता है, वो इतने समर्थ हैं प्रभु। मशक कर ही बिरंची समा, बिरंची माने ब्रह्मा, उनके जैसा बना सकते हो। ब्रह्मा जी एकदम कांपने लगे। जब प्रहलाद जी नहीं बोले तो प्रभु ने कहा, तो चलो कोई बात नहीं, इंद्र, इंद्र का पद दे दूं। इंद्र तो बिल्कुल आंखों में पानी आ गया। इंद्र ने कहा कि इनका क्या भरोसा, अब इसको बैठा दे, हमारी सिंहासन तो ऐसी हिल जाती है, आपने सुना है ना, उसने ऐसी तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। उनका सिंहासन तो हिलता रहता है, क्या भरोसा, चंद्र बनाऊं, वरुण बनाऊं, कौन कौन देवता का पद दूं तुम्हें? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अरे पानी पर नौका चलाने वाला केवट भी प्रभु को प्रभु देना चाहते थे तो केवट ने भी मना कर दिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या चाहिए? आपसे केवल भक्ति चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह थोड़े, अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। बार बार प्रभु पूछते हैं प्रहलाद से कि क्या चाहिए बेटा बता, क्या चाहिए, देने में मुझे अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा मुझे, बड़ी शांति मिलेगी यदि तुम मांगोगे तो। प्रभु बार बार पूछने के बाद में प्रहलाद जी ने बड़े मधुर स्वर से, करुणा भर के स्वर में कहा कि प्रभु यदि मैं कुछ आपसे मांगूं तो आप मुझे दे दोगे? बोले कि बिल्कुल मैं दे दूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, तुम बताओ चाहिए क्या। तुम्हें प्रहलाद बेटा, तुम्हें मांगने में विलंब हो सकती है, मुझे देने में विलंब नहीं है बिल्कुल, तो मांग करके देखो। प्रहलाद जी ने कहा कि तब तीन बार हाँ कह दीजिए, देंगे? प्रभु ने कहा देंगे देंगे, हाँ देंगे देंगे, अरे हाँ भाई देंगे तुमको, बताओ क्या चाहिए। बोले कि प्रभु मैं आपसे मांगता हूं। प्रहलाद जी ने अपने हाथ को बांध लिया, विनम्र तो पहले से ही थे, सारी इंद्रियां विनम्र हो गई, प्रभु के पाद पद्मों में लग गई। और प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद ने पहले सोचा कि लगता है कि हमारे हृदय के कक्ष में कुछ मांगने की कामना रह गई है, अंदर में कुछ इच्छा छुपी हुई है। प्रहलाद ने बोल दिया उस शब्द को जो सोचता था, उसको बोला कि प्रभु हमारे हृदय के कक्ष में, हमारे हृदय के आंगन में यदि कुछ मांगने की इच्छा रह गई हो, कुछ धन की इच्छा रह गई हो, यश ख्याति की इच्छा रह गई हो, मन में कुछ भौतिक वासनाएं रह गई हो, तो आप उसको निकाल करके साफ कर देना, यही मेरा मांग है आपसे। ऐसी भक्ति किया उन्होंने, ऐसी मांगा। ये केवल चिंतन का प्रभाव है। मैं आप सबको उसी बात पर, प्रभुपाद जी का जो संदेश है, प्रहलाद जी का जो प्रार्थना है, उसी बात में ले जा रहा था कि आप सब वैष्णव हैं, संत हैं, सभी गुरु दीक्षित हैं, बड़े अच्छे संस्था से लगे हैं, इस्कॉन के जैसा प्रमाणित अथराइज, इतना सुंदर, इतना सुगम, जल्दी प्रभु मिलने वाले और कहीं रास्ता नहीं है। बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने, बड़ा पुण्य है हम सब का, बड़ा सुकृतिवान है हम सब कि ऐसे संस्था, ऐसे गुरु से हम लोग जुड़े, प्रभुपाद जी से। हम लोगों को चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। यही प्रहलाद जी की स्तुति है, यही प्रार्थना है। इनको भागवत को पढ़ते भी रहना चाहिए, कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं। संत लोग तो बैग में रख लेते हैं, जहाँ टाइम मिलता है वो उलट के देख लेते हैं। इसका दर्शन करना भी, भागवत जी का दर्शन करना भी भगवान का दर्शन है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, भगवान आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। हरे कृष्णा।